निर्गमन अध्याय 4। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे। निर्गमन 4:1। उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। वे कहेंगे, किसने तुझे भेजा? ठीक है, परमेश्वर ने कहा, उनसे कहना, तुम्हारे पितरों के यहोवा परमेश्वर ने भेजा है, जो तुम्हारे पितर अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर है। परंतु मूसा ने आपत्ति करने का दुस्साहस किया। वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपने हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। निर्गमन 4:1-9 पद। इसलिए अब तू चिन्ह मांगता है, ठीक है, तू ऐसा सोचता है कि वे तेरा विश्वास नहीं करेंगे। जब तू वहां जाए और वे कहें, परमेश्वर ने तुझे नहीं भेजा है, तब तू उनके देखते अपनी लाठी भूमि पर डाल देना। जब ये सांप बन जाएगी और उनके पीछे सांप पड़ जाएगा, तब वे विश्वास करेंगे। यदि वे तब भी विश्वास न करें, तो अपना हाथ छाती में रखकर ढांप लेना और फिर निकालना, तब ये कोड़ी हो जाएगा और वे ये देखकर तुझसे दूर भागेंगे। तब तू अपना हाथ छाती में रखना, तो वो फिर देह के समान सामान्य बन जाएगा। इसलिए इन चिन्हों से लैस हो जा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? निर्गमन 4:10-11 पर। आपका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अंधे लोगों को बनाया, परमेश्वर ने गूंगे और बहरों को बनाया? यही तो परमेश्वर कह रहा है, वो इसका उत्तरदायित्व ले रहा है। अब मेरे लिए ऐसा उत्तरदायित्व लेना बहुत कठिन है, क्योंकि तब तुरंत मेरे मन में परमेश्वर के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता कि क्यों परमेश्वर क्यों होने देता है कि कोई बच्चा अंधा या गूंगा या बहरा जन्मे। मेरी समझ से बाहर है और इस प्रकार मेरे मन में परमेश्वर के प्रति चुनौती भरे विचार आने लगते हैं। परंतु कभी कभी परमेश्वर कहता है कि उसने शारीरिक दुर्बलता की रचना की है, परंतु ध्यान दीजिए कि वो यहाँ प्रतिपाद प्रस्तुत नहीं कर रहा है, वो केवल सीधा सीधा तथ्य का वर्णन करता है। ये मेरे विश्वास की बड़ी चुनौतियों में से एक है, परंतु यदि मैं इस विडंबना पर विजय पा लेता हूं, तब मुझ में परमेश्वर के प्रति विश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। और सत्य तो ये है कि ऐसी अधिक विश्वास जिसे कोई हिला न सके, यदि मैं केवल उस बात पर विश्वास रखूं जो मैं अपनी बुद्धि से समझ पाता हूं, तो वह विश्वास नहीं। जिसे मैं समझ नहीं पाता उस पर विश्वास करना विश्वास का वो कदम है जो परमेश्वर को आदर देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इब्रानियों 11:6। इसलिए यदि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अंधे बच्चे को बनाया है और फिर भी विश्वास करूं कि परमेश्वर प्रेम और न्यायी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र मेरे लिए घोषणा करता है कि परमेश्वर प्रेम और न्यायी है, तब मैं ऐसी चीज पर विश्वास कर रहा हूं जिसे मैं समझ नहीं सकता। एक प्रेमी परमेश्वर कैसे एक अंधे बच्चे को सिरजेगा मैं नहीं जानता, पर यह जानता हूं कि उसने सिरजा है। परमेश्वर ने कहा कि उसने किया और मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, यद्यपि ये मेरे समझ से परे है और मैं इसे अंतर्ग्रहण नहीं कर पाता, तो भी मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, यद्यपि उसने ऐसे कामों को किया है जो मेरी समझ से परे है। मैं उसके प्रेम के प्रति विश्वास में डगमगाता नहीं, क्योंकि ये मेरे तर्क और मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं वास्तव में परमेश्वर के साथ विश्वास की गहराई में उतरता हूं। परमेश्वर ने उस अंधे बालक का उपयोग मेरे विश्वास को नाश करने के लिए नहीं किया, परंतु मेरे तार्किक विश्वास को परमेश्वर में गहराई प्रदान करने के लिए, मन के विश्वास को उन्नत करने के लिए किया है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं विश्वास करता हूं कि यदि परमेश्वर ने एक अंधे या बहरे या गूंगे या किसी भी तरह से अपंग बच्चे को सिरजा है, तो इसमें परमेश्वर का अपना एक उद्देश्य है कि बालक ऐसा हो। यद्यपि मैं परमेश्वर के उद्देश्य को समझ नहीं पाता, कहने का अर्थ है कि मेरी बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाती और मैं बौद्धिक रूप से डगमगाने लगता हूं, तब मुझे किसी और सहारे की आवश्यकता होती है। मेरा ये सहारा विश्वास है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर मैं तुझ में भरोसा रखता हूं, यद्यपि मैं समझता नहीं, तब मेरा विश्वास पहले से बढ़कर गहरा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि यदि परमेश्वर ने किसी बच्चे को विकलांग बनाया है, सो इसमें उसका कोई विशेष कारण और उद्देश्य है, चाहे मैं उसके उद्देश्य को समझू या ना समझू। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं, सोच सकता हूं, ये ऐसा क्यों है। मुझे आज भी याद है कि अमेरिका पर जब आर्थिक संकट का प्रकोप था, तब हम आराधना में एक गाना गाया करते थे, मैं अत्यधिक मगन हो जाऊंगा जब ये दिन बीत जाएगा, मैं अति आनंदित होऊंगा जब यीशु आएगा, परमेश्वर के कल में कोई दुख न होगा, जब यीशु आएगा मैं अति आनंदित होऊंगा। उस समय वे वास्तव में प्रभु की बाट जो रहे थे, परंतु युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात ये गाना हमेशा के लिए समाप्त हो गया, फिर कभी गाया नहीं गया। अब हमारे मन में ये विचार उठते हैं, प्रभु थोड़ा रुक, मैं ये नया घर खरीदने जा रहा हूं, ये नई कार खरीदने जा रहा हूं, थोड़ा रुकना, मुझे एक स्विमिंग पूल भी बनवाना है, प्रभु यदि तू थोड़ा रुक जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, तू तो जानता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी भी है। अब फिर समय चेतावनी देने लगा है, अब जीवन पहले जैसे आरामदायक नहीं रहा, फिर से वही गाना गाने का समय आ गया, मैं अत्यधिक मगन हो जाऊंगा जब ये दिन बीत जाएंगे। पर हे परमेश्वर, क्या आप प्रेम के परमेश्वर नहीं हैं? हाँ है, परंतु कलीसिया ढीली पड़ रही है, आत्मसंतुष्ट बन रही है, अपने ही ढंग से कार्य कर रही है, और परमेश्वर को हमें एक दूसरे पात्र में उंडेलना पड़ा था। हमें ये जानने के लिए बाध्य करना पड़ा था कि ये पृथ्वी, ये संसार हमारा घर नहीं है। हम तो बस यहां से प्रवासी के समान गुजर रहे हैं। परमेश्वर का ये इरादा नहीं है कि हम भौतिक वस्तुओं की खोज में मगन हो जाएं, परंतु ये कि हमारे हृदय पवित्र आत्मा तथा उसके अनंत राज्य की बातों पर लगे। इसलिए वो हमें दिखाना आरंभ करता है कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से भौतिक वस्तुएं छीनी जा सकती हैं। अचानक से मैं गहरी जड़ों की ओर देखने लगता हूँ। मैं उसके अनंत राज्य की लालसा करने लगता हूँ। जब मैं बीमारी पर दृष्टि करता, तब मैं शारीरिक दुर्बलता पर दृष्टि डालता, तब मैं अपने हृदय में कहता हूँ, हे प्रभु यीशु, शीघ्र उस दिन को शीघ्र ला जब अंधे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, जब लंगड़े आनंद से कूदेंगे, जब गूंगे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, वो दिन शीघ्र ला। परमेश्वर ने घोषणा की, मैं ही ने उन्हें बनाया, मैं इसे नहीं समझता, और सत्य तो ये है कि मैं इसे समझा भी नहीं सकता, परंतु ये सब बातें परमेश्वर में मेरे विश्वास को टाल नहीं सकती, ना ही इस विश्वास को कि वो प्रेमी परमेश्वर है, और ये भी कि वो निष्पक्ष परमेश्वर है। मैं आपको समझा नहीं सकता कि कैसे, और ना ही आपके सामने इस विषय में कोई तर्क प्रस्तुत कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी बुद्धि से परे है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये बातें मेरे बुद्धि में समा नहीं पाई है। मुझे तो केवल उसके अनंत वचन पर विश्वास रखना है और उसमें भरोसा रखना है। इस प्रकार परमेश्वर में मेरा विश्वास महान होता है। अब जा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। निर्गमन 4:12-13 पर शाब्दिक अर्थ में मूसा ने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी दूसरे को भेज दे। ये सब होने के बाद भी वे तो यही कहेंगे, किसने तुझे भेजा, मैं उनसे क्या कहूंगा। यहोवा ने कहा, बस ये कहना, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेजा, परंतु प्रभु, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, ये तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी, उसका उपयोग कर। परंतु प्रभु, मैं ठीक से बोल नहीं सकता, मैं सुवक्ता नहीं हूं। ठीक है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मैं बोलने के लिए तेरे मुंह में वचन डालूंगा। प्रभु, किसी दूसरे जन को मेरे स्थान पर भेजने में आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कोई ऐसा जन जो अनुभवी हो, परिपक्व हो। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट करने को निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। निर्गमन 4:14-15 पर ठीक है, क्या तू ऐसे ही चाहता है? हारून तेरे संग जाएगा, वो ही तेरा प्रवक्ता होगा। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, निस्संदेह उसने अनुमति दे दी थी। आगे चलकर आप देखेंगे कि हारून ठोकर का कारण बना था, ये परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं था। परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाना चाहता है, परंतु तभी जब आप उसे ऐसा करने दें, तब वो आपके लिए अपना सर्वोत्तम कार्य करेगा। अनेक बार मूसा के समान हम परमेश्वर को उसी चरण पर बांध देते हैं जहां से हमें वो ऊपर उठाना चाहता है। परमेश्वर मूसा को बहुत ऊंचा उठाना चाहता था, परमेश्वर उसके साथ रहता और उसकी सहायता करता, उसे हारून की आवश्यकता नहीं थी। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो उसके बाधा बना। तो ऐसे ही चाहता है तो ठीक है, ऐसा ही कर, परंतु यहाँ सच्चाई ये है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के सर्वोत्तम से एक चरण नीचे हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि वो आपको सबसे ऊंचे उठाएं और जयवंत बनाएं, परंतु संभावना ये हो जाती है कि आप अपनी उन्नति की सीढ़ी पर दो तीन चरण नीचे ही रह जाते हैं। परमेश्वर द्वारा सबसे ऊंचे उठाए जाने में आपकी अनिच्छा परमेश्वर के कार्यों को सीमित कर देती है। आपके जीवन में परमेश्वर के काम में रुकावट आ जाती है। परमेश्वर तब भी अत्यधिक प्रेमी और अनुग्रहकारी होता है। आप उसे जितना अधिक अपने आप को उठाने देंगे, उतना ही अधिक वो आपको ऊंचा उठाएगा और वो आपके लिए सर्वोत्तम कार्य करेगा। परंतु दुर्भाग्य से हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों में रुकावट उत्पन्न करते हैं, संसार से समझौता और विकल्प की खोज के द्वारा। यहोवा कहता है, ठीक है, तू हारून को चाहता है कि वो संग जाए, ठीक है, वही प्रवक्ता होगा, तू अपने वचन उसके मुंह में रखना और वो बोलेगा, पर फिर भी मैं तेरे ही मुंह में वचन डालूंगा और उसके मुंह में भी मैं तुझे सिखाऊंगा कि क्या करना है, और वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। निर्गमन 4:16। दूसरे शब्दों में वो मध्यस्थ का काम करेगा। वचन तो मैं तुझी से बोलूंगा और तू मेरे वचन हारून को देगा, इसलिए अब तू एक प्रकार का साधन बन गया। अब वो कौन था जिसने जंगल में सोने का बछड़ा बनाया था? हारून इसराइल पर मुसीबत ले आया था। मूसा बार बार जोर दे रहा था कि परमेश्वर उसके स्तर तक नीचे उतर आए, इसकी अपेक्षा कि वो परमेश्वर के स्तर तक ऊंचा उठे। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उसने कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिदान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों, बहुवचन है यहाँ, ये नहीं बताया कि दूसरा पुत्र कब जन्मा, हम केवल गर्शोम के बारे में जानते हैं, को गधों पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना और जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हटीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। निर्गमन 4:17-21 पर। यहाँ हटीला शब्द का इब्रानी में मूल अर्थ है सामर्थ प्रदान करना। मैं उसके मन को दृढ़ बनाऊंगा। जब हम फिरौन के साथ मूसा की बातचीत पर आगे ध्यान देंगे तो वहां हम पढ़ते हैं, फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया और यहोवा ने फिरौन का मन कठोर कर दिया। हटीला और कठोर के लिए इब्रानी में अलग अलग शब्द हैं। यहोवा ने फिरौन का मन हटीला दृढ़ कर दिया, या यहोवा ने फिरौन के मन को मजबूत बना दिया। दूसरे शब्दों में फिरौन ने अपने मन में निश्चय कर लिया और इस दृढ़ निश्चय में परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर ने उसकी मनोस्थिति को बल प्रदान किया। तू हटीला बनना चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे हटीला बनने के लिए बल प्रदान करूंगा, जिससे कि मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊं। यही तो इसका भाव अर्थ है। तू कठोर बनना चाहता है, ठीक है। फिरौन ने यहोवा की ओर अपना मन कठोर कर लिया और परमेश्वर ने उसकी इस मनोस्थिति को और भी दृढ़ कर दिया। इसलिए तो परमेश्वर घोषणा कर रहा है, मैं उसके मन को हटीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि फिरौन से कहना कि इसराइल मेरा पुत्र मेरा पहलौटा है, अब तू उन्हें जाने दे कि वे मेरी आराधना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना देगा तो मैं तेरे पुत्र तेरे पहलौटे को नाश कर दूंगा। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। निर्गमन 4:22-24। इन पदों को समझना कठिन है। एक और तो यहोवा मूसा से कहता है मिस्र को जा। मूसा मिस्र को जा रहा था कि यात्रा के बीच सराय में जहां वो ठहरा था परमेश्वर उसे भेंट करने आया और उसे मार डालना चाहा। क्या हुआ मैं नहीं जानता। हो सकता है कि उसे दौरा पड़ा हो। ये एक दिलचस्प बात है कि उसकी पत्नी जानती थी कि ये सब क्या था और क्यों हो रहा था। ये भी हो सकता है कि पुत्रों को लेकर उसकी पत्नी और उसमें झगड़ा हुआ हो। आपको ध्यान होगा कि परमेश्वर ने 8वें दिन इब्री बालकों के खतना किए जाने का आदेश दिया था। खतना इन लोगों का परमेश्वर के साथ वाच्य के रिश्ते का चिन्ह था। उन्हें ऐसा लोग होना था जो आत्मा के चलाए चले, शरीर के पीछे ना चले, इसलिए खतना की विधि ठहराई गई थी। ये उस बात का खुला चिन्ह था कि अब ये परमेश्वर के लोग पहचाने जाएं, परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते का चिन्ह। जब मूसा मिदान देश को गया था और वहां के महायाजक यित्रो की बेटी सिपोरा से विवाह किया, तब उनके गर्शोम नामक पुत्र हुआ था। तब संभवतः उसने कहा था हमें बालक का खतना करना चाहिए। ओह, तुम मेरे पुत्र का अंग भंग करना चाहते हो। उसने मूसा का विरोध किया होगा और मूसा इतने दबाव में आ गया होगा कि उसने सोचा जाने दो, नहीं करते। उस समय उसने अपने पुत्र का खतना नहीं किया था पर अपनी पत्नी की बातों में आ गया होगा। वैसे भी वो अत्यंत विनम्र था। पर जब परमेश्वर ने मूसा से सराय में भेंट की और उसे मार डालना चाहा, तब हो सकता है कि उसकी पत्नी इसका कारण समझ गई हो। परमेश्वर कैसे मार डालना चाहता था ये तो पवित्र शास्त्र में स्पष्ट नहीं है, और ना ही मैं इस पर अपनी बुद्धि से टिप्पणी करना चाहूंगा। परमेश्वर के भेद कोई नहीं जानता। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। निर्गमन 4:25। यद्यपि सिपोरा इस मामले पर क्रोधित थी परंतु फिर भी उसने समझदारी से काम किया, इसराइल के परमेश्वर का आदर किया और पति की गलती को सुधारने के लिए बालक का खतना किया, परंतु इसके प्रति अपने मन की कड़वाहट को उसने प्रकट आवश्यक किया। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वो बोली तू लहू बहाने वाला पति है। निर्गमन 4:26। मूसा परमेश्वर की वाचा के लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने जा रहा है, पर स्वयं उसने अपने पुत्र को खतना ना करके वाचा के चिन्ह को पूरा नहीं किया। मूसा की इस विफलता के कारण परमेश्वर उस पर सवाल प्रकट करना चाह रहा था कि जो वो चाहता है वो होगा ही। मूसा की पत्नी ने अकस्मात ही जान लिया कि परमेश्वर क्या चाहता है, परंतु उसने इस काम के लिए मूसा को ही दोष दिया और रोष प्रकट करती रही। तब यहोवा ने हारून से कहा मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वो गया और परमेश्वर के पर्वत के पास उसे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वो सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका प्रतीति की। और ये सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। निर्गमन 4:27-31 पद। यहाँ छुटकारे की बात का आरंभ होते ही वे सब उत्तेजित हो उठे, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की।